दिन भर आज है 3 सितंबर मंगलवार। मैं हूँ दिव्या आर्य। कश्मीर में दुकानें खोलने और बसें चलाने से क्यों कतरा रहे हैं लोग?
जब तक ये दो चीजें खत्म न हो जाएं, एक गुस्सा एक डर, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी दुकान पे चाबी लेकर दुकान का ताला खोलूं।
लंदन में ब्रितानी कश्मीरियों का बड़ा प्रदर्शन और अफगानिस्तान से अमरीकी सेना हटने पर क्या भारत हो चिंतित?
इस वक्त अफगानिस्तान की सरकार बहुत कमजोर है और ये वो तालिबान नहीं है जो आज से 20 साल पहले का तालिबान था।
और तनावग्रस्त इलाकों में तैनात अर्धसैनिक दलों का कटेगा भत्ता।
लो मेडिकल वाले जो हैं वो ऑपरेशंस में पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए उनको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलना चाहिए।
सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, संदीप राय से। जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के जन प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ ये पहली बैठक है। साथ ही खबर है कि BJP सूबे का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पाकिस्तानी सरकार ने भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात की इजाज़त दे दी है। कुछ दवाओं की कीमतों में भारी इजाफा होने की खबरों के बाद ये फैसला आया है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे। भारत सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं घाटी के कई हिस्सों में ठप हैं, जिसकी मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि वो अमरीका के साथ कभी भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। इस समय दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर बना हुआ है। रूहानी ने कहा कि अगर अमरीका पिछले महीने लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेता तो बहुपक्षीय वार्ता में अमरीका के शामिल किए जाने को तेहरान स्वीकार कर लेता। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का कोई वादा नहीं किया था। बीते साल मई में परमाणु समझौते से ट्रंप के हट जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है।
अगर अमरीका तमाम तहरीम खुदश रो बरदारे,
अगर अमेरिका अपने सभी प्रतिबंध हटा लेता है तो मेरा मानना है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में वो शामिल होता है या नहीं, इसका कोई मायने नहीं बचता। जो सबसे अहम है वो है प्रतिबंध। अतीत की तरह बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने का अमेरिका के लिए अभी भी मौका है। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। चक्रवाती तूफान डोरियन की वजह से बहामास में आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। एक सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि बाढ़ के कारण कई बड़े क्षेत्रों समेत ग्रैंड बहामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी पानी भर गया है। एक स्थानीय समाचार वेबसाइट ने मार्श हार्बर शहर की तबाही वाली तस्वीर पोस्ट की है। एक ट्रक को शवों से भरा हुआ दिखाया गया है और पूरा शहर बाढ़ के पानी से भरा दिखाई दे रहा है। फ्रीपोर्ट में एक अस्पताल पानी से पूरा भरा हुआ है, जिसकी गैलरी में मरीज व्हीलचेयर में दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा है कि तूफान स्थिर हो गया है, इसलिए डोरियन से और नुकसान होने की आशंका बरकरार है। चीन ने हांगकांग की नेता कैरी लैम का समर्थन किया है। बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हांगकांग और मकाऊ मामलों के चीनी कार्यालय के प्रवक्ता यांग गुआंग ने दृढ़ता से लैम का बचाव किया। यांग ने कहा कि पूर्व बरतानवी उपनिवेश की आज़ादी पर बहस नहीं हो सकती। हांगकांग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक इलाका है। किस आधार पर ये किन्हीं और देशों के साथ गठबंधन बना सकता है? जहां तक लोगों की संप्रभुता का मामला है, हांगकांग की संप्रभुता चीन और चीन के 1.4 अरब चीनी जनता के साथ जुड़ी हुई है। क्या इसके बावजूद इस पर बहस हो सकती है? क्या इस बारे में बात हो सकती है? ये थे यांग युआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संसद निलंबित करने के सरकारी फैसले को चुनौती देने वाले मामले में ब्रिटेन के पूर्व कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री सर जॉन मेजर को अदालत में सबूत पेश करने की अनुमति मिल गई है। सर जॉन को लिखित रूप से अपना पक्ष रखने की इजाज़त दी जाएगी। प्रमुख ब्रेक्सिट विरोधी कार्यकर्ता गिना मिलर ने पहले ही लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली एक याचिका दायर कर रखी है। इस मामले में अलग से एक सुनवाई स्कॉटलैंड में भी चल रही है। इटली के 5-स्टार मूवमेंट के सदस्य वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन बनाने को लेकर एक ऑनलाइन मत संग्रह में हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये गठबंधन होने पर सहमति बन जाती है तो दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी किसी भी गठबंधन के लिए संसद में विश्वास मत हासिल करने की जरूरत बनी रहेगी। कभी एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी रहीं दोनों पार्टियों ने हाल ही में संयुक्त नीति की घोषणा की है। इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बिना सार्वजनिक खर्चे में छेड़छाड़ के बजट में उपाय करने के सुझाव दिए हैं। यूक्रेन की संसद ने मुकदमा चलाए जाने से सांसदों को मिली छूट को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का ये प्रमुख चुनावी वादा था। ये कानून अगले साल की शुरुआत से लागू होगा। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं दिव्या आर्य। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हुई प्रेसवार्ता में मंगलवार को ये दावा किया गया कि बड़े पैमाने पर पाबंदियां हटाए जाने के बाद भी आम लोग इसलिए दुकानें नहीं खोल रहे, बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्वों से डर है। इसी दावे का जब आज जायजा लिया गया तो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव बशीर कोंगपोश ने श्रीनगर में बीबीसी को बताया,
हम दो तलवारों के बीच फंसे हुए हैं। मरकजी हुकूमत चाहती है कि हम झुक जाए और जो यहाँ का एक अपना एक खौफ है वो हमें दूसरी तरफ से झुकाने के लिए कहते हैं। पहले बात होती थी कि इनको 500 रुपए दे के हुर्रियत वाले पत्थरबाजी करवाते हैं, लेकिन आज कौन सा हुर्रियत वाला खुला है, आज कौन सा सियासी लीडर खुला है जो उनको 500 रुपए दे दे, आज क्यों नहीं है उस पर बात कर रहे हैं। सिंपल, यहाँ पर एक डर है, आप माने या ना माने, यहाँ पर कश्मीर में एक डर है। डर क्या है? मसला, जो मसला है उसको हल करना है। जब तक ये दो चीजें खत्म ना हो जाए, एक गुस्सा एक डर, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे सामने कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती है कि मैं अपनी दुकान पे चाबी लेकर दुकान का ताला खोल।
ये थे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव बशीर कोंगपोश। और मेरे सहयोगी आमिर पीरजादा श्रीनगर के पोरिमपोरा बस स्टेशन गए ये जानने के लिए कि दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्यापार सरकार के सभी दावों के बावजूद क्यों ठप पड़े हैं।
इस पोरिमपोरा बस स्टेशन से तकरीबन 600 से 700 बसें कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए चलती है। वेस्टर्न बस सर्विस के चेयरमैन का यह कहना है कि वो सिर्फ 100 बस ड्राइवर्स के ही कांटेक्ट में है, बाकी 600 बसें ड्राइवर्स के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि 25 दिनों से यहाँ का सारा कम्युनिकेशन बंद पड़ा हुआ है।
अगर सरकार ने सारा नॉर्मल किया है तो फिर तो सरकार को अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए ना पहले। जब पब्लिक चलता ही नहीं है तो गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? अगर नॉर्मल है तो हमारी गाड़ियाँ भी चलेगी, जब गवर्नमेंट गाड़ी निकलेंगी। जिस दिन से ये हुआ है, हमारे जो ड्राइवर है, कंडक्टर जो गाड़ियाँ लेकर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, उनका कोई पता नहीं कौन किधर है, क्योंकि जो जो कंटेक्ट है वो तब से ही बैठे हैं, जो भी जहाँ वो वही है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है वो रोड पर ही होता है, वो तो किसी ग्राउंड में नहीं होता है। तो रोड पर तो दिमाग है कि रोड पर गाड़ियाँ ही चलती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यही चलते है। तो इसको जाद में आना है, इसको तो नुकसान होगा।
कश्मीर का सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इससे मुतासर नहीं हुआ है, यहाँ का ट्रेड, यहाँ के शॉप्स, यहाँ के सारे कमर्शियल हब्स भी बंद पड़े हैं।
उसके पटाखो खोले ऑटोमेटिक पानून हिसाब पानून खौफ।
हम कैसे दुकानें खोल सकते हैं? हम डरे हुए हैं और कोई गलती नहीं करना चाहते। अब सरकार हमको दुकानें खोलने को कह रही है, बोल रही है सब नॉर्मल हो गया है, पर अगर कल कोई आम शहरी हमारी दुकान पर आकर पूछता है कि आपने दुकान क्यों खोली, तब उसके हाथ में तो पिस्तौल भी हो सकती है। हम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालें?
हम एक परिवार से मिले जिनके परिवार के हेड की मौत उनके दुकान पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी फैमिली का ये कहना है, तीन लोग उनके दुकान पे आए, एक रिवॉल्वर से उनको गोली मारकर उनकी मौत होती है, जिसकी वजह से कश्मीर के जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जितने भी कमर्शियल हब्स हैं, दुकानदार हैं, हर किसी के अंदर डर और भी बढ़ता जा रहा है।
ये थे बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। धारा 370 हटाए जाने को करीब एक महीना हो चुका है और सरकार का दावा है कि आम जिंदगी अब पटरी पर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की। इसे कई हलकों में अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के पक्ष में आम सहमति तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आज की मुलाकात की पूरी जानकारी बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से।
गृह मंत्रालय के दफ्तर में हुई जम्मू कश्मीर पंचायत सदस्यों की बैठक में समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक घाटी से 22 सरपंच शामिल थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली बैठक में शामिल हुए हंडवारा के सरपंच मीर जुनैद ने कहा,
कुछ डिमांड सामने रखी BDC को लेके, इंश्योरेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके।
अमित शाह ने प्रत्येक पंचायत सदस्य के लिए 2,00,000 रुपयों का बीमा और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का वायदा किया है। एक महिला पंच का कहना था,
जो पॉलिसी सेंटर के पास है वही पॉलिसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगी, जो कि पहले नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ 370 का कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी पॉलिसी में। दूसरा, जो यहां की सैलरीज है, जो वहां के एम्प्लॉयज हैं उनको सेम सैलरी मिलेगी। हर विलेज में 5 जॉब्स क्रिएट की जाएंगी।
दिल्ली में हुई बैठक में कुछ सरपंचों ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने के बारे में भी गृह मंत्री की राय जाननी चाहिए। इस बाबत पूछे जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना था,
आई थिंक दिस हार्डली रिक्वायर्ड अ रिटरेशन बिकॉज़ द होम मिनिस्टर हैड सेड दिस इवन द हाउस ऑफ इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट वाज आल्सो।
मुझे लगता है इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि गृह मंत्री ने यह बात संसद में कही है और बाद में इसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अभी का फैसला खास परिस्थितियों में लिया गया है और जैसे ही हालात वैसे हो जाएंगे जैसा कि उम्मीद की जा रही है, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा। ये थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। भारत सरकार ने अगस्त की 5 तारीख को जम्मू कश्मीर सूबे को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया, साथ ही सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। कई जगहों पर आज जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों के साथ गृह मंत्री की हुई बैठक को बहुत अहम बताया जा रहा है, लेकिन 2018 में सूबे में पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसका 2 प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बायकॉट किया था। लोगों का सम्मेलन उस चुनाव में बहुत ही कम था और घाटी के कई इलाकों में चुनाव में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का मिल पाना तक मुश्किल था। जहां इस चुनाव को केंद्र के हाथों मैनेज बताया गया था, वहीं से पूर्व के सालों में बहुत सारे ग्राम प्रतिनिधियों को चरमपंथियों के हाथों जान गंवानी पड़ी थी। एक राय यह भी है कि ग्राम प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क कर केंद्र सरकार कश्मीर में राजनीतिज्ञों की एक नई पौध तैयार करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल सरपंच मीर जुनैद का कहना था,
बहुत जबरदस्त चीज हमने आज गृह मंत्री साहब से सुनी कि परिवारवाद का खात्मा होने से पहली बार जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर पंच और सरपंच में होगा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है।
आज दिल्ली में जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों से मिल रहे थे तो दूसरी तरफ सूबे के गवर्नर सतपाल मलिक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोपहर बाद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन से भी मिले। खबर है कि BJP अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस बीच सेना के जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए एक बहाली अभियान को और उसमें शामिल होने वालों को लेकर कई TV चैनलों पर खबर जारी रही। साथ ही महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने का प्लान तैयार किया है। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
और कश्मीर घाटी में 90 के दशक के विस्थापन से पहले जो करीब 3,00,000 कश्मीरी पंडित रहते थे, अब कुछ 3,000 से 5,000 ही रह गए हैं। ज्यादातर पंडित जम्मू और दिल्ली में बस गए हैं। तो धारा 370 हटाए जाने पर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं माजिद जहांगीर की विशेष रिपोर्ट।
किसी तरह हम इस इलाके में पहुंचे जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं। इस इलाके में भी वही हाल था जो 5 अगस्त से कश्मीर के दूसरे इलाकों में है, यानी तनाव, दुकानें बंद, सड़कें सुनसान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब और सुरक्षा बलों की जगह जगह तैनाती। मुसलमान और पंडित यहां एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों में एक जैसा खौफ। हर एक बात तो करना चाहता था लेकिन कैमरा पर नहीं, یہاں ایک کشمیری پنڈت کے گھر کی طرف جب ہم بڑھے تو کچھ مسلمان مہیلائیں ہمیں غور سے دیکھ رہی تھیں کہ ہم انجان لوگ پنڈتوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ کسی طرح ہم ایک پنڈت کے گھر میں داخل ہو گئے تو پنڈت گھر کے باہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم سے بات چیت کرنے لگے۔ پہلے تو یہ پنڈت انوچھید 370 پر کچھ بھی کہنے سے بچتے رہے، لیکن باتوں باتوں میں اس مدعے پر لب کشائی شروع کی۔ بیتے ایک مہینے سے بی بی سی لگاتار یہ کوشش کر رہا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کی 370 کو ہٹائے جانے پر ان کی پرتکریا جانے، لیکن آج تک ہم اس میں سفل نہیں ہوئے تھے۔ اس بار کامیابی تو ملی، لیکن بڑی مشقت کے بعد اور اس شرط پر کہ بی بی سی ان کے نام ظاہر نہ کریں۔
دس ٹائم دی سچویشن از ویری کریٹیکل اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمنٹ آن دس سبجیکٹ۔
یہ تھے ایک کشمیری پنڈت جو بتا رہے تھے کہ ابھی کشمیر کے حالات اس قدر نازک ہیں کہ ایک کشمیری پنڈت انوچھید 370 کے مدعے پر کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ دوسرے پنڈتوں کی طرح ہم کشمیر سے وستھاپت نہیں ہوئے اور ہم ابھی بہت کشمکش میں ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور اب 370 ہٹا دیا گیا ہے اور ہمیں پوری طرح جانکاری نہیں ہے کہ بھوشیہ میں کیا ہوگا۔ یہ پوچھنے پر کہ آخر انوچھید 370 پر اپنی رائے ظاہر کرنے سے کشمیری پنڈتوں کو کیا خطرات ہیں تو وہ بولے،
بیسیکلی وی ہیو بین لیونگ ہیئر ود دی میجورٹی کمیونٹی فرام لاسٹ 3 ڈیکیڈز اینڈ وی فیل ایٹ ہوم۔
دراصل ہم یہاں کشمیر میں دشکوں سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے ہیں۔ لیکن دوسرے کشمیری پنڈت جو کشمیر سے باہر رہ رہے ہیں ان کے اس مدعے پر اپنے وچار ہیں جو وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب کر رہے ہیں۔ یہ تھے کشمیری پنڈت کے شبد۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا کشمیر اور کشمیر سے باہر رہنے والے پنڈتوں میں انوچھید 370 کے ہٹائے جانے پر کوئی مدبھید ہیں تو ان کا کہنا تھا،
بٹ سو فار دا ریسٹ اور مائنورٹی کمیونٹی ہو آر سٹےئنگ آؤٹ سائڈ دی ویلی، دے ہیو دیئر اون آپشنز، دے ہیو دیئر اون اوپینینز۔
وہ بتا رہے تھے کہ دراصل ہم بیتے ایک مہینے سے یہاں کسی کمیونیکیشن کے بغیر رہ رہے ہیں۔ کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ابھی تک اس مدعے پر ہماری بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی علاقے کے ایک دوسرے کشمیری پنڈت کہتے ہیں کہ انوچھید 370 ہٹ گیا تو اب وکاس کے راستے کھل جائیں گے۔
کیا میری رائے کیا ہے، بولتے ہیں سب نوکری ملیں گے، اچھا اچھا کام ہو جائے گا، کوئی بیکار نہیں رہے گا، سب کو اچھا اچھا حساب ملے گا۔
ایک کشمیری پنڈتانی کا بھی ہمارے ساتھ بات چیت میں کہنا تھا کہ 370 کو ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں وکاس ہوگا۔
ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو ہمارے لیے تو اچھا رہے گا، سب کے لیے، بچوں کا فیوچر بنے گا، نوکریاں ملے گی، تو ہم سب یہی چاہتے ہیں ماحول اچھا رہے، سارے لوگ ترقی کرے۔
یہ پوچھنے پر کہ کشمیر کے مسلمان اس فیصلے سے ناراض ہیں تو وہ بولی،
چلو ناراض تو ہے بٹ کہاں تک رہے گی ناراضگی، آگے اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے اچھا رہے گا۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 370 ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان سے انہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔
مشکلات تو ہے، بچوں کی مشکلات ہیں، دکانیں بھی بند ہیں، پر آگے بھگوان پہ بھروسہ ہے کہ آگے اچھا ہی ہوگا۔
گورتلب ہے کہ ورش 1990 میں کشمیر میں ہتھیار بند آندولن شروع ہونے کے بعد کشمیر سے لاکھوں کشمیری پنڈت کشمیر سے وستھاپت ہو چکے ہیں جو بھارت کے کئی شہروں میں اب رہ رہے ہیں۔ کشمیر میں ہتھیار بند آندولن شروع ہونے کے بعد آج تک سینکڑوں کشمیری پنڈت مارے جا چکے ہیں۔ سال 2008 میں بھارت سرکار نے وستھاپت کشمیری پنڈتوں کے لیے پرائم منسٹر پیکیج کی گھوشنا کی تھی۔ ایسے کشمیری پنڈتوں کے لیے سرکار نے کشمیر کے کئی علاقوں میں ٹرانزٹ کیمپس بنائے ہیں۔ کشمیر میں آج بھی سینکڑوں ایسے کشمیری پنڈت پریوار رہ رہے ہیں جنہوں نے کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب رخ لندن کا، جہاں ہزاروں برطانی مول کے کشمیری لوگ پردرشن کے لیے جٹے۔ زیادہ جانکاری کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بی بی سی سنواد داتا گگن سبروال سے۔
دیویا، میں لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر میں ابھی رکی ہوئی ہوں۔ یہاں پہ جو برٹش کشمیریز ہے انہوں نے ایک پیسفل مارچ آرگنائز کیا ہے جموں کشمیر کو لے کر، جو بھی جموں کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے اس کے لیے یہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ جب ہم صبح آئے تھے تو یہاں پہ صرف کچھ 500-600 لوگ تھے، لیکن 2-3 گھنٹوں میں ہی، ابھی جب میں یہ نظارہ دیکھ رہی ہوں تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ لوگ لندن سے آئے ہیں، نوٹنگہم سے آئے ہیں، برمنگہم سے آئے ہیں، आए हैं. यू नो यूके के हर शहर से लोग कोचेज भर भर के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो कश्मीर में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हैं. मैंने कुछ मिनट पहले यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और उनसे पूछा कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं इस मार्च के द्वारा, और उन्होंने मुझे ये बताया.
हम आए आजाद कश्मीर आजाद करने के लिए. हमारे माँ बच्चों के साथ जो हो रहा है अच्छा बात नहीं हो रही, समझे. इंडिया जो कर रहा है मोदी अच्छी बात नहीं कर रहा. अपने मेरे बहन भाई जो है ना बहुत जख्मी हो रहे हैं, बहुत उसके पास दूध भी नहीं है, दवाई भी नहीं है. वो अंदर तीन चार जो है एक घर में फौज खड़ी हुई है, उसको बाहर निकालनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके. हमको चाहिए आज़ाद कश्मीर.
इसके लिए हम हुए हैं कि ये जो हो रहा है जुल्म, बहुत ही ज़्यादा जुल्म कश्मीरों पर, इसको हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए. एंड देयर शुड बी पीस होना चाहिए इधर, और हम पीस के लिए हम आए हैं इधर कि पीस होना चाहिए.
जो कश्मीरी लोग हैं ज़बरदस्ती इन पर हुकूमत नहीं कर सकेगी. दीज पीपल आर रेबेलियस. ये आपका कभी भी जो ना राज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना आज करेंगे, ना आज से 70 साल बाद करेंगे, कभी नहीं करेंगे. बुनियादी हक है द राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो आपने इनको प्रॉमिस किया था उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, उस पर आप इम्प्लीमेंट करें ताकि यहाँ पर अमन हो. यहाँ पर अमन होने से पाकिस्तान में भी अमन होगा और इंडिया में भी अमन होगा.
तो ये बताएं गगन की जो आज जो प्रदर्शन वहाँ हो रहा है ये पहला नहीं है. भारत ने जब 370 धारा हटाई तो उसके बाद पहले भी प्रदर्शन हुए हैं ब्रिटेन में, लंदन में और शहरों में. क्या ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन आप मानती हैं?
हाँ दिव्या, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. जब हमने 15 अगस्त का प्रोटेस्ट कवर किया था लंदन में, वहाँ पे मे बी 2,000-3,000 मैक्सिमम 5,000 लोग थे. आज जो नजारा हमारे सामने है इट्स अनबिलीवेबल. मैंने इतने लोग, वो भी यू नो एशियन लोग, एक साथ इकट्ठा लंदन में पहले कभी नहीं देखा. और यहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ ही फीट की दूरी पे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे आज शाम ब्रेग्जिट का एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है.
जानकारी दे रही थी गगन सबरवाल. और अब रुख पाकिस्तान का. पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर भारत से जान बचाने के लिए जरूरी यानी जीवन रक्षक दवाओं के आयात को दोबारा शुरू कर दिया है. कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की वजह से इसे रोक दिया गया था. ताजा जानकारी के लिए बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक सीधे फोन लाइन से इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शहजाद, ये बताएं कि ये फैसला अब क्यों लिया गया है?
जी देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि इसको बैन को लिफ्ट किया जाए, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि वजूहात क्या है. जबकि इससे पहले जो बैन लगाया गया था उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया कि ये कोई जज्बाती फैसला था क्या था. अब भी लग यही रहा है कि जो पाकिस्तान में जो मेडिसिन की जो कंपनीज हैं उनके जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं उनकी तरफ से जो उन पे प्रेशर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस जो बैन हमने लगाया था ये ठीक नहीं था और इसको उन्होंने लिफ्ट कर दिया है. अब ये जो इसके ये बैन लिफ्ट होने के बाद ये मामला जो है वो दोबारा उसी डगर पे चलेगा, यानी कि पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि इंडिया की तरफ से जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन बनाने के वो पाकिस्तान जो है वो इजीली इंपोर्ट कर सकेगा.
और आप अभी अभी प्रेस वार्ता खत्म हुई है, कैबिनेट की बैठक थी आज, उसके बारे में कुछ बताएं. क्या भारत के लिए कई सारी बातें जो सरकार करती रही है, खासतौर पर भारत की एयर स्पेस को फिर से बंद कर दिया जाएगा, उधर से उड़ानें नहीं आ पाएंगी भारत से पाकिस्तान की तरफ, इस बारे में कोई फैसला हुआ?
जी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये मामला जो हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने बताया हमें कि ये मामला उस कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हुआ. बल्कि आज जब ये कैबिनेट की मीटिंग जो है वो खत्म हुई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से यही सवाल पूछे गए कि क्या कोई स्पेस पे जो बैन लगाना था उस पर कोई डिसीजन लिया गया, क्योंकि इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो हैं कर्फ्यू लगे हुए एक महीना हो गया, इस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कोई वाज जवाब नहीं दिया. तो लग यही रहा है कि इस मामले को डेफर कर दिया गया है. और लेकिन जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ मीडिया टॉक्स किए, कुछ जर्नलिस्टों से बात की है, उनका यह कहना है कि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है लेकिन हम इसका फैसला उस वक्त करेंगे जब इसको जो सर्कमस्टांसेस हैं जो इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं अगर उसमें बेहतरी नहीं आती या जो حالات ہیں نارمل نہیں ہوتے تو پھر اس کو ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ اس کو جو اسپیس کو جو ہے وہ اس کو بین کر دیا جائے.
جی بہت شکریہ شہزاد. کافی بار پاکستان نے اس کو ایک طرح سے ایک مسل فلیکسنگ کی طرح استعمال کیا ہے لیکن ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں. بھارت سرکار نے جب سے کشمیر میں انوچھید 370 کو واپس لے کر وہاں سنچار مادھیم انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سیواؤں پر روک لگائی پاکستان میں اسے لے کر تیکھی پرتکریا ہوئی ہے. لیکن جب سنیکت عرب امارات اور بحرین جیسے دیشوں نے کشمیر پر پاکستان کا پکش لینے کے بجائے بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی کا سواگت کیا انہیں سمانت کیا تب سے یہ بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ پاکستان کو مسلم امہ کی سوچ کو کنارے کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سمبندھ استھاپت کرنے چاہیے. کیا یہ سمبھو ہے؟ دلی سے ونیت کھرے کی رپورٹ اور یہ رپورٹ شروع ہوتی ہے پاکستانی ٹی وی چینلوں پر جاری بحث سے.
پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحث بڑھتی جا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا میں بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے معاملے کی بات گشت.
یہ مسلم امہ کا جو سارا تاثر تھا جس کے گرد ہماری فورن پالیسی ہچکولے لیتی رہی یہ پورے 70 سال سے, اس کو نہ سمجھنا کہ یہ کھوکھلا تاثر تھا.
کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ سمبندھ استھاپت کر سکتا ہے؟ پاکستان ٹی وی پر آج کل یہ بحث گرم ہے. پاکستان میں یہ بحث نئی نہیں ہے لیکن جموں اور کشمیر پر بھارت کے قدم پر پاکستان کے سٹینڈ کو امید کے مطابق انتراشٹریہ سمرتھن نہیں ملنے سے پاکستان میں نراشا ہے. 5 اگست کو بھارت نے جموں اور کشمیر سے دھارا 370 ہٹا کر وہاں انٹرنیٹ ٹیلی فون کنیکشن کاٹ کر سرکشا ویوستھا بے حد کڑی کر دی تھی. ادھر سنیکت عرب امیرات اور بحرین جیسے مدھیہ پورو دیشوں نے کشمیر پر پاکستان کے سٹینڈ کا سمرتھن کرنے کے بجائے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کو سمانت کیا. اس سے پاکستان میں غصہ بڑھا.
ایک طرح سے پوری مسلم امہ کا ایک پاکستان جو ہے وہ ایک مین ہب ہے اور لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلم امہ کا جو رول کشمیر کے اوپر ہندوستان کی جو جارحیت ہوئی اس کے بعد سے خاموشی تھی اور جس طرح سے ہندوستان کے ساتھ لوگوں نے اپنا ایک رویہ رکھا ضرور سوال اٹھے ہیں کہ ہم تو پوری مسلم امہ کی خاطر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں لیکن ہماری لیے کوئی نہیں کھڑا, یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ سب کے تعلقات ہیں مراسم ہیں. تو یہاں سے ایک بنیاد ضرور مسلم امہ کے کردار کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوئی.
اس ماحول میں جانے مانے پترکار کامران خان نے ٹویٹ کر کہا, جب ہمارے سب سے اچھے دوست نئے دوست بنا سکتے ہیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں پر بحث کیوں نہیں کر سکتے؟ اسرائیل اور پاکستان کے بیچ راجنیتک سمبندھ نہیں ہے. حالانکہ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ موساد اور آئی ایس آئی لمبے سمے سے آپس میں سہیوگ کرتے رہے ہیں. فلسطینیوں کے مانوادھکاروں اور ان کے لیے الگ دیش کی مانگ کو پاکستان لمبے سمے سے سمرتھن دیتا رہا ہے. ادھر بھارت اور اسرائیل کے سمبندھ بھی لمبے سمے تک ڈھکے چھپے رہے لیکن سال 1992 میں انہوں نے پورے راجنیتک سمبندھ استھاپت کر لیے. پاکستان میں ایک سوچ رہی ہے کہ دنیا کو چلانے میں کتھت یہودی لابی کا اثردار رول رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ سمبندھ استھاپت کرنے سے بھارت کو دنیا میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے میں بہت مدد ملی ہے, پھر پاکستان بھی ایسا کیوں نہ کرے؟ پاکستانی پترکار کنور خلدون شاہد بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کے 2 مہینے بعد ہی پاکستان کے پہلے ودیش منتری ظفر اللہ خان نے سنیکت راشٹر جنرل اسمبلی کے ادھیویشن میں اسرائیل بنائے جانے کا تیکھا ورودھ کیا تھا اور یہاں تک کہ جب اسرائیل کے پہلے پردھان منتری ڈیوڈ بین گورین نے راجکیے سمبندھ استھاپت کرنے کے لیے محمد علی جناح کو ٹیلی گرام بھیجا تو جناح نے اس کا جواب بھی نہیں دیا.
پاکستان کا جو کلیم رہا تھا اسرائیل کے خلاف وہ ایک اسلامسٹ کلیم تھا کہ جی کیونکہ فلسطین میں مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے مقدس عبادت گاہیں موجود ہیں وہاں پہ آپ ایک یہودی سٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پہلے 10 سال جو اسلامسٹ بلاک تھا مسلمان ممالک کا جو اس کو اپوز کر رہے تھے جن میں عرب سٹیٹ بھی شامل تھی ان کو لیڈ کرتے رہے تھے.
پاکستان کی یہ نیتی لمبے سمے تک جاری رہی, مشرف کے دور میں کوشش ہوئی اس نیتی میں بدلاؤ لانے کی لیکن پاکستان میں اسرائیل کو لے کر جس طرح کا ورودھ ہے کیا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ راجنیتک سمبندھ استھاپت کرنا سمبھو ہے؟ کمر خلدون شاہد,
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سعودی عربیہ یا باقی گلف ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو بھی انہوں نے ریکگنائز نہ کیا اور پاکستان آؤٹ آف دی وے جا کے کر دے, اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب اگر ایسی موو ہوگی تو پاکستان کے پاس یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہم نے کیونکہ باقی دنیا نے کیا تو ہم نے بھی کیا اور اس کے چانسز بالکل ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ہیں.
ادھر پاکستانی رکشا معاملوں کی جانکار عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سمبندھ سے اسرائیل کو کیا حاصل ہوگا؟
اسرائیل کو سب سے بڑا جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ ایران سے ہوتا ہے, لیکن مت بھولیں کہ پاکستان میں 21% سے زیادہ جو مسلمان جو پاپولیشن ہے وہ شیعہ ہیں اور اگر کوئی ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا تو پاکستان کو شدید یہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا۔
عائشہ صدیقہ کے مطابق اگر پاکستان اور اسرائیل راجنیک سمبندھ ستھاپت کرتے ہیں تو یہ آرمی چیف کا فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر سرکار کا اڑایا ہوا غبارہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اثر عام جنتا میں کیا ہوتا ہے۔ ونیت کھرے، بی بی سی دلی۔
یہ تھی ونیت کھرے کی رپورٹ، اور آپ سن رہے ہیں دن بھر کا وشیش ایک گھنٹے کا کارکرم۔ میں ہوں دیویا آریہ۔ ریڈیو سیٹ چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ابھی بہت سی اور خبریں آنا باقی ہیں۔ جانیں گے کہ چرچا میں کیوں ہیں ملائم سنگھ یادو اور اعظم خان، ساتھ ہی ایک وشیش رپورٹ ہوگی سوشل میڈیا پر آج کیا چرچا میں رہا اس پر، اور امریکی سینا اب جب افغانستان سے جانے والی ہے تو وہاں پر جو طالبان اور باقی ایسی طاقتیں ہیں ان کے بارے میں کیا بھارت کو چنتت ہونا چاہیے، یہ سب ہوگا۔ لیکن پہلے وشو سماچار۔
بی بی سی سماچار سندیپ رائے سے۔ جموں کشمیر کے پنچایت سدسیوں کے ایک پرتنیدھی منڈل نے آج دلی میں کیندریہ گرہ منتری امت شاہ سے ملاقات کی۔ انوچھید 370 کے تحت وشیش درجے کو ختم کیے جانے کے بعد کشمیر کے جن پرتنیدھیوں کی کیندر سرکار کے ساتھ یہ پہلی بیٹھک ہے۔ اس بیچ پاکستانی سرکار نے بھارت سے جیون رکشک دواؤں کے آیات کی اجازت دے دی ہے۔ کچھ دواؤں کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہونے کی خبروں کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ چکرواتی طوفان ڈورین کی وجہ سے بہاماس میں آئی باڑھ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ باڑھ کے کارن کئی بڑے علاقوں میں سمیت گرینڈ بہاماس انتراشٹری ہوائی اڈے میں بھی پانی بھر گیا ہے۔ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ وچلت کر دینے والی ہیں۔ یوروپیہ سنگھ سے الگ ہونے پر تیکھے راجنیتک وواد کے بیچ برٹش سنسد کی آج بیٹھک ہوئی۔ کسی بھی قیمت پر اگلے مہینے تک یوروپیہ سنگھ چھوڑنے کے پردھان منتری بوریس جانسن کی یوجنا کو وفل کرنے کی سانسد کوشش کر رہے ہیں۔ ستارون کنزرویٹو پارٹی کے باغی سانسد بنا سمجھوتے والے بریکزٹ کو روکنے کے لیے وپکش سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ادھر سنسد نلمبت کرنے کے جانسن کے فیصلے کو چنوتی دینے والے معاملے میں بریٹین کے پورو کنزرویٹو پردھان منتری سر جان میجر کو عدالت میں ثبوت پیش کرنے کی انومتی مل گئی ہے۔ جرمنی میں ایک دکشن بھارتی سانسکرتک سنگھن نے کہا ہے کہ ہندو کٹرپنتھیوں کے ویروت کے بعد ایک فوڈ فیسٹیول میں اپنے مینیو سے بیف کری ہٹانے کو مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ فوڈ فیسٹیول فرینکفرٹ میں بھارتی کنسولیٹ نے آیوجت کیا تھا۔ ایران کے راشٹرپتی حسن روحانی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کبھی بھی دوپکشی وارتا نہیں کریں گے۔ اس سمے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ چرم پر بنا ہوا ہے۔ روحانی نے کہا کہ اگر امریکہ پچھلے مہینے لگائے گئے سبھی آرتھک پابندیوں کو ہٹا لیتا تو بہوپکشی وارتا میں امریکہ کے شامل کیے جانے سے تہران کو کوئی آپتی نہیں ہوتی۔ چین نے ہانگ کانگ کی نیتا کیری لیم کا سمرتھن کیا ہے۔ بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران ہانگ کانگ اور مکاؤ معاملوں کے چینی کاریالے کے پروکتا یانگ گوانگ نے درڑھتا سے لیم کا بچاؤ کیا۔ یانگ نے کہا کہ پورے برطانوی اپنیویش کی آزادی پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اٹلی کے فائیو سٹار موومنٹ کے سدسیہ وامپنتھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ گٹھ بندھن بنانے کو لے کر ایک آن لائن مت سنگرہ میں بھاگ لے رہے ہیں۔ اگر یہ گٹھ بندھن ہونے پر سہمتی بن جاتی ہے تو دوبارہ چناؤ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر بھی کسی بھی گٹھ بندھن کے لیے سنسد میں وشواس مت حاصل کرنے کی ضرورت بنی رہے گی۔ یوکرین کی سنسد نے مقدمہ چلائے جانے سے سانسدوں کو ملی چھوٹ کو سماپت کر دیا ہے۔ راشٹرپتی ولادیمیر زیلنسکی کا یہ پرمکھ چناوی وعدہ تھا۔ یہ قانون اگلے سال کی شروعات سے لاگو ہوگا۔ اس سے پہلے کسی سانسد پر تبھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جب سانسد ویکتیگت آدھار پر اس کی چھوٹ کو سماپت کرنے پر مہر لگائی۔ بی بی سی سماچار۔
کئی مہینوں سے امریکہ اور افغانستان کے بیچ ٹل رہی بات چیت اپنے آخری پڑاو پر پہنچتی دکھ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پر پرسارت ایک انٹرویو میں امریکہ کے شانتی دوت زالمے خلیل زاد نے طالبان کے ساتھ شانتی سمجھوتے کی روپریکھا بتائی ہے۔ اس کے تحت آنے والے مہینوں میں امریکہ اپنے 5,000 سے زیادہ سینکوں کو افغانستان سے ہٹا لے گا۔ حالانکہ اس سمجھوتے کو ابھی امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی سہمتی نہیں ملی ہے۔ افغانستان سے قریب 19 سال بعد امریکی سینا کے جانے سے کیا بھارت کو چنتت ہونا چاہیے، یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی کابل میں بھارتیہ دوت رہ چکے راکیش سود سے۔
ڈیل جو ہے یہ ایک طرح سے طالبان اور امریکہ کی ڈیل ہے، افغانستان کے اندر سٹیبلٹی یا شانتی کی ڈیل نہیں ہے۔ ہم اس کو اکثر ان دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پر یہ ملانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، तालिबान वहां वापस आना चाहता है, तो ये इस मुद्दे की डील है।
क्योंकि इसमें अफगान सरकार शामिल नहीं है,
अफगान सरकार
कितनी कितनी स्थायी रहेगी और इससे जो दक्षिण एशियाई ये जो पूरा रीजन है इस पर इसका क्या असर पड़ता देखते हैं आप?
अफगानिस्तान की सरकार जो है वो काफी इस बात से नाखुश है कि वो ये बातचीत के अंदर शामिल नहीं है, और अब जैसा हम देख रहे हैं कि तालिबान ने अपने जो टेररिस्ट अटैक्स हैं बिल्कुल भी कम नहीं किए हैं। उनकी तरफ से अभी भी अभी कुंडूज में, बागलान में, कई जगह जहां पे भी अटैक हो रहे हैं। अभी काबुल के अंदर एक गेस्ट हाउस पे अटैक हुआ,
16 लोग मारे गए उसमें और करीबन 119 के करीब घायल भी हुए हैं। सोमवार रात ही हुआ जब ये सारी बातचीत चल रही थी।
हाँ, जब ये बातचीत एक तरह से वो संडे को, रविवार को मिस्टर खलीलजाद वहाँ खत्म करके वापस काबुल आ गए थे, तो और वो वहाँ ब्रीफ कर रहे थे और साथ में सोमवार को ये वारदात हो रही थी। तो इसलिए तालिबान का ये कहना है कि हमारा कोई सीज फायर नहीं है। वो सीज फायर तब होगा जब हम अफगान लोगों के साथ बैठ कर ये तय करेंगे कि सत्ता में हमारा क्या हिस्सा होना चाहिए, और जब वो एग्रीमेंट होगा तब जाके हम सीज फायर करेंगे। तो इसलिए ये एक तरह से ये है कि ये तो अमेरिका को अपना अपना वहां से निकलना जो है उसको एक तरह से कंक्लूड करना है।
पर अमेरिकी सेना जब वहां से निकल जाएगी या ज्यादा तादाद में निकल जाएगी, कुछ थोड़ी सी ही उनकी मौजूदगी वहां रह जाएगी, तो उससे क्या तालिबान को या तालिबान जैसी और भी जो वहां ताकतें हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा?
देखिए, तालिबान को तो बढ़ावा मिल ही चुका है एक तरह से। अब कई देश ऐसे हैं जो तालिबान को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनके डेलीगेशन बुला रहे हैं। तालिबान की डेलीगेशन मॉस्को में जाकर मीटिंग करती है, दोहा में ये 9 राउंड मीटिंग के कर चुके हैं। तालिबान की डेलीगेशन चाइना जाती है, वहाँ पर मीटिंग करते हैं। सऊदी अरेबिया गए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हैं, ईरान गए हैं, नॉर्वे गए हैं, जर्मनी गए हैं। अब ये वो तालिबान नहीं है जो आज से 20 साल पहले का तालिबान था, क्योंकि आज से 20 साल पहले सिर्फ 3 ही मुल्क थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को रिकग्निशन दी थी, जिन्होंने तालिबान की सरकार को एक मान्यता दी थी, वो थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज की तारीख में तालिबान की मान्यता जो है वो एक तरह से सब सारी दुनिया में कई सारे देशों ने दे दी है।
तो क्या अब इस बढ़े और बदले तालिबान से जो वहां पे मजबूत और हो सकता है, भारत को चिंतित होना चाहिए?
कुछ चिंता तो है, क्योंकि हमने हमेशा से जो भी हमने वहां पे काम किया, हमने हमेशा अफगानिस्तान की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ कोऑपरेशन में उनके कहे के अनुसार हमने वहां पे जो हमारे आर्थिक प्रोजेक्ट्स थे वो उस तरह से चुने, और सारी जगहों में चाहे स्कूल है, चाहे सड़क है, चाहे डैम है, चाहे बिजली के वो ट्रांसमिशन लाइन्स है। अब सवाल ये है कि पर इस वक्त अफगानिस्तान की सरकार बहुत कमजोर है, तो इसलिए अब हमारा उतना इन्फ्लुएंस तो नहीं है। ये जो नया तालिबान है वो आइडियोलॉजिकली उसका क्या रुझान है? क्या अभी भी वो पाकिस्तान के ऊपर उतना ही निर्भर है, उतना ही निर्भर रहना चाहेंगे जैसे आज से 20-25 साल पहले की बात थी? अभी आज की तारीख में इसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन करना तो मैं समझता हूँ थोड़ी जल्दबाजी होगी।
ये थे राकेश सूद। और अभी अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिख लड़की की जबरन शादी के मामले में सुलह हो गई है। आपको ध्यान होगा, सिख परिवार का आरोप था कि उनकी बेटी की एक मुसलमान से शादी करा दी गई और जबरन धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया। पूरी जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों पर आज पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ आंदोलन करने को भी कहा। इस बीच आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जा करने से लेकर भैंस चोरी तक कुल 78 मामले दर्ज हो चुके हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
करीब 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। एक दिन पहले जब इसकी सूचना पार्टी की ओर से दी गई थी तो ये तय माना जा रहा था कि मुलायम सिंह आजम खान के समर्थन में ही मीडिया से बात करने आ रहे होंगे, और ये बात आज सच साबित हुई।
हमारे साथ ही उपयुक्त नेता आजम खान ठीक मानकर के चलने से बनाई गई यूनिवर्सिटी, और जैसा मेरा भी सहयोग हमारे साथियों का सहयोग रहा, देश विदेश के प्रसन्न मित्र थे।
मुलायम सिंह कह रहे थे कि वो आजम खान को दशकों से जानते हैं। उन्होंने चंदा जुटाकर और भीख मांगकर रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय बनवाया है, उसमें किसी तरह की कोई घपलेबाजी नहीं की गई है, लेकिन उनके खिलाफ सरकार एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज करती चली जा रही है।
मात्र 2 बीघा जमीन के लिए 27 गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किए गए और 13 से 14-15 वर्ष की उम्र में
मुलायम सिंह का कहना था कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आजम खान ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि खुद बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ सरकार ज्यादती कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी कहते हैं कि आजम खान को उन्हीं अपराधों की सजा दी जा रही है जो मंत्री रहते उन्होंने किए थे।
जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो तमाम गरीबों की जमीन कब्जा कर ली गई, तमाम लोगों के घर उजाड़ दिए गए, किसी के बकरी चोरी का मुकदमा किसी खिलाफ करा दिया गया, किसी खिलाफ बकरी चोरी भैंस चोरी का मुकदमा करा दिया गया, इस तरह आजम खान ने लोगों की जमीनें हड़पी।
आजम खान पर रामपुर में अब तक कुल 78 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें जमीन कब्जाने, रंगदारी मांगने, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से लेकर भैंस चोरी तक के मामले शामिल हैं। ताज़ा दर्ज मामलों में पुलिस ने सोमवार को आजम खान और उनके कुछ साथियों के खिलाफ लूटपाट और धमकाने का मामला दर्ज किया। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा कहते हैं,
6 लोगों को नामजद किया गया, आजम खान और उनके सहयोगी आलिम हसन जो कि पूर्व में सीओ के पद पर तैनात हुए और अन्य कुछ लोग नामजद हैं इसमें।
न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले हफ्ते जौहर विश्वविद्यालय की कोषाध्यक्ष उनकी बड़ी बहन से भी पूछताछ की गई, जिसका रामपुर में काफी विरोध हुआ था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों रामपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस मामले में सड़क पर उतरने की अपील की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर अब सियासी गर्मी और बढ़ेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
हमेशा विवादों में घिरे रहे मौजूदा लोकसभा सांसद आजम खान के राजनीतिक सफर पर आइए सुने मेरे सहयोगी दिलनवाज पाशा की विशेष रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के खिलाफ ये नारेबाजी उसी रामपुर में हो रही है जहां से वो लोकसभा चुनावों में 5.5 लाख से अधिक वोट हासिल करके जीते हैं। यूपी पुलिस ने उन पर 78 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें डराने धमकाने से लेकर जमीन कब्जाने तक के आरोप हैं। विरोधी आजम खान पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हैं। आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमों को जोर शोर से उठा रहे कांग्रेस नेता फैसल खान लाला कहते हैं,
देखिए आजम खान ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास किराए का मकान था और लम्बरेटा स्कूटर था। आज की तारीख में आजम खान उत्तर प्रदेश के 10 बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है, जबकि आजम खान के पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान को इस पे जवाब देना चाहिए कि हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास कहां से आई।
आजम खान ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी स्थापित की है, इसके प्रयास उन्होंने साल 2005 से ही शुरू कर दिए थे। आरोप है कि उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीनों पर कब्जे किए, लेकिन वो सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं।
विश्वविद्यालय बनाया है, मैं भूमाफिया हूँ, 4.25 बीघा जमीन का चोर हूँ मैं, किताब चुराई है मैंने। विश्वविद्यालय रामपुर में है और उसको मिटाने वाली 2 सरकारें हैं, एक कमजोर सा आदमी 2 सरकारों से लड़ रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे आजम खान ने 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखा। वो रामपुर से 9 बार विधायक रहे हैं और अब सांसद हैं। सपा विधायक और उनके करीबी फहीम इरफान कहते हैं कि उन्होंने लोगों का दिल जीता है।
9 बार MLA कोई यूं नहीं बनता कि कोई धोखे से बन गया, 9 बार वही MLA बनता है जिसने रिकॉर्ड कायम किया है, जो गरीबों का, मजलूमों का, सच्चाइयों का और सच्चे लोगों के साथ खड़ा होने वाला नेता होगा, वही जो है इस तरीके का कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।
आजम खान ने रामपुर से गरीबों और बेरोजगारों की राजनीति शुरू की और फिर मुसलमानों के नेता बन गए। पेशे से डॉक्टर और स्थानीय राजनीति की गहरी समझ रखने वाले शाहिद महमूद बताते हैं कि आजम खान ने रामपुर के नवाब परिवार का विरोध किया और यही उनकी कामयाबी की अहम वजह रहा।
मास अपील, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि जो पढ़ा लिखा नहीं था, बेरोजगार भी था, उन्होंने नवाबों को उसका जिम्मेदार ठहराया नेचुरली कि भाई नवाबों की वजह से बेरोजगारी और ये सब चीजें, और गरीबों के साथ जैसे बीड़ी वर्कर्स थे या जरी के काम करने वाले थे, गरीबों के साथ वो उठे बैठे, गरीबों को हम पे कॉन्फिडेंस मिल गया।
आजम खान फिलहाल फरार हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
सारी गंभीर धाराएं हैं, उनमें गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है, तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये सारी की चीजें डिपेंड करेंगे कि हमें उनसे गिरफ्तार करके मामले में कितनी हेल्प मिलती है।
वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि आजम खान गिरफ्तार किए गए तो वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मंगलवार को पुलिस ने धोखाधड़ी और नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में अमित जोगी और अजीत जोगी ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बदले की नीयत से कार्रवाई की है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जोगी परिवार के खिलाफ पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से आरोप लगता रहा है कि वे आदिवासी नहीं हैं। पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी होने का लाभ लेते रहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी ने इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है, लेकिन अब उनके बेटे अमित जोगी नई मुश्किल में फंस गए हैं। अमित जोगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा नेता समीरा पैंकरा की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया। अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जाति के साथ साथ जन्मस्थान को भी अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग दर्शाया है। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाली भाजपा नेता समीरा पैंकरा कहती हैं,
उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया है कि मैं सार बहरा में पैदा हुआ हूं। उन्होंने कोर्ट में आकर के खुद कहा है कि मैं अमेरिका के डेलास टेक्सास में पैदा हुआ हूं। उनके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है जो इंदौर का है, वो खुद अपने आप में बता दे कि पैदा हुए कहां है।
कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपना राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनाने वाले अमित जोगी को गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद ही अपनी जमानत पर बहस की, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले अमित जोगी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बदले की नियत से कार्रवाई कर रही है।
बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय मेरे साथ है और भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, जहां से बैठकर वो अपने बदलापुर की गंध फैला रहे हैं।
अमित जोगी इससे पहले भी हत्या के एक मामले में कई महीनों तक जेल में रह चुके हैं। यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने ताजा मामले में अपने बेटे अमित जोगी की गिरफ्तारी को लेकर सफाई दी कि हाईकोर्ट से अमित जोगी के जन्म स्थान को लेकर पहले ही उनके पक्ष में फैसला आ चुका है।
अमित जोगी के जाति और जन्म को लेकर हाईकोर्ट ने अमित जोगी के पक्ष में फैसला दे दिया। छत्तीसगढ़ की पुलिस हाईकोर्ट अपने आप को ऊपर मानती है। भूपेश बघेल न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते हैं। भूपेश बघेल जंगल का राज चला रहे हैं, कानून का राज नहीं चला रहे हैं।
अजीत जोगी ने भले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जंगल राज चलाने का आरोप लगाया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है।
पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून का राज्य है छत्तीसगढ़ में, और उसी के अनुरूप भाजपा नेता और 2013 में अमित जोगी के खिलाफ उम्मीदवार रही समीरा पैकरा की शिकायत, यह कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई है।
छत्तीसगढ़ में फिलहाल अमित जोगी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों से जुड़े दूसरे राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों के अलावा कई बड़े अफसरों के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है कि अमित जोगी की गिरफ्तारी ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और देश के माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के लिए तैनात किए गए केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF के कर्मियों को शारीरिक रूप से अक्षम पाया गया है और उन्हें मिलने वाले विशेष भत्ते को रोकने की सिफारिश की गई है। राज्य में CRPF के महानिरीक्षक GHP राजू ने यह सिफारिश करते हुए कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाके सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और ऐसे में शारीरिक रूप से कमजोर जवानों और अफसरों की तैनाती विभाग पर एक बोझ जैसा ही है। दिल्ली से BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
इसका खुलासा खुद CRPF के IG GHP राजू ने मुख्यालय को चिट्ठी भेजकर किया। उन्होंने चिट्ठी में बताया कि 894 जवानों और अधिकारियों को लो मेडिकल कैटेगरी यानी शारीरिक रूप से अक्षम पाया गया है। दिल्ली स्थित CRPF के मुख्यालय में प्रशासन के महानिरीक्षक MS भाटिया ने BBC से बात करते हुए कहा,
जो है ना वहाँ के IG ने ऐसा ऑर्डर निकाला है और डायरेक्टरेट में अभी हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। We'll take a call on that. मतलब his logic is कि LMC वाले जो हैं वो ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, लो मेडिकल वाले जो हैं वो ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए उनको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलना। We'll take a view on this.
छत्तीसगढ़ के CRPF के IG ने मुख्यालय को चिट्ठी लिखकर ये भी कहा कि ऐसे शारीरिक रूप से कमजोर बीमार अधिकारियों और जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया ही नहीं जाना चाहिए था। इस पर भाटिया कहते हैं,
नहीं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे LMC केसेस को रखना ही नहीं चाहिए छत्तीसगढ़, और अगर रखना मजबूरी रखा हुआ है तो फिर उनको रिस्क हार्डशिप नहीं देना चाहिए। हाँ मतलब अगर उस तरह से देखो तो अब कैंप में हो तो जो बंदा कैंप में रह रहा है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में, उसको बनिस्बत जो आदमी ऑपरेशन पे निकल रहा है उससे तो कम रिस्क है ना, क्योंकि कैंप तो आपके सिक्योर है। अच्छा आप अगर लो मेडिकल कैटेगरी है तो आप कैंप में ही रहोगे, ड्यूटी नहीं करोगे आप, इन द सेंस कि इवन सेंट्री ड्यूटी नहीं करते, तो जब आराम ही कर रहे हो तो फिर ठीक है, हार्डशिप मान लिया, रिस्क तो कम ही है फिर भी, तो दैट इज हिज लॉजिक बट वी आर एग्जामिनिंग।
पूर्वी और मध्य भारत माओवाद की चपेट में है, जहां पिछले कुछ दशकों से सुरक्षा बलों और माओवादी छापामारों के बीच युद्ध चल रहा है। इस हिंसा में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की है। छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक DM अवस्थी कहते हैं कि नक्सल विरोधी अभियान में मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत जवानों और अधिकारियों की ही जरूरत है।
नहीं वैसे वो तो ठीक बात है कि यहाँ पे फिजिकली और मॉरली फिट आदमी की जरूरत है। इट इज फुल ऑफ रिस्क एवरीवेयर इन बस्तर एरिया। अब वो सारे लोगों को एक जैसा नॉर्मल फिट भी नहीं किया जा सकता, एक साथ ग्रेजुअली किया जा सकता है। तो आई थिंक IG CRPF उसी दिशा में प्रयास कर रहे होंगे कि जो लोग फिट और अच्छे हैं उनको यहाँ लाके और इन लोगों को दूसरी ड्यूटीज में भेजा जाए।
हालांकि DM अवस्थी मानते हैं कि इस अभियान में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका काफी अहम है।
नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपना एक सिग्निफिकेंस और यूज दोनों है। हम उन्हें कारपेट सिक्योरिटी में यूज करते हैं और ऑपरेशनल एक्टिविटी में हम अपनी स्पेशलाइज फोर्सेस को यूज करते हैं, तो इसलिए उनकी जो उपयोगिता है, और कैंप्स में उनको बिठाते हैं और वहाँ कैंप जो होते हैं वो लॉन्चिंग पैड होते हैं, तो उन कैंप से हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जो कि स्पेशल फोर्सेज से किए जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इस कारण थोड़ा सा नुकसान तो उठाना पड़ा है, उसी को शायद ठीक करना चाहते होंगे IG से।
वहीं झारखंड के पुलिस महानिदेशक रह चुके राजीव कुमार का मानना है कि नक्सल विरोधी अभियान में शामिल कोई भी अधिकारी या जवान अगर शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो फिर उसका इस अभियान में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है।
नहीं, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है और अच्छी तरह ट्रेंड नहीं है नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, तो उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमको जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फोर्स चाहिए वो बिल्कुल फिजिकली फिट हो, जैसे कोबरा बटालियन CRPF में, तो वहाँ के जो उनका जो फिटनेस लेवल और उनको ट्रेनिंग जो है जंगल वॉरफेयर की, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमारे लिए काफी सहूलियत।
नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात केंद्रीय बलों के जवानों को हर महीने 17,300 रुपए वेतन के अलावा मिलते हैं, जबकि अधिकारियों के लिए ये रकम 25,000 रुपए प्रतिमाह है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये राशि बढ़ाने की घोषणा भी की है, मगर CRPF के IG GHP राजू का कहना है कि शारीरिक रूप से बीमार या कमजोर अधिकारियों को अति संवेदनशील इलाकों से हटाना उनके लिए भी बेहतर है और अभियान के लिए भी। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
और अब रुख सोशल मीडिया का। बुशरा शेख बता रही हैं आज क्या रहा चर्चा में।
मंगलवार सुबह मुंबई के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC गोदाम में आग लग गई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहे।
हाँ बुशरा, मेरे सामने ये वीडियो है जिसमें आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं और दूर तक धुआं, काला काला धुआं फैला हुआ है और बहुत दूर से इस वीडियो को बनाया गया है और उसमें भी इतना ज़्यादा धुआं और इतनी आग भभकती हुई दिख रही है जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जाहिर है ONGC का गोदाम है, यहाँ तेल और बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होंगे। ये बहुत शेयर किया गया है वीडियो।
आग की ऊंची लपटों को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली भी कराया गया है। इस आग के बाद प्लांट की गैस को भी दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है। इसके अलावा आज दोपहर बाद से ही सोशल मीडिया पर मिताली राज की चर्चा रही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ट्विटर पर सार्थक नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मिताली राज पहली ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने T20 में 2000 रन बनाए थे।
बिल्कुल, और एक ये यूजर हैं ट्विटर पे, ये कह रही हैं मिताली राज का अंत कहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो सिर्फ T20 से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन ये यूजर लिख रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा रोना बंद नहीं हो रहा। तो जाहिर है जैसे कि भारतीय पुरुष जब क्रिकेट में खेलते हैं और बड़े कीर्तिमान हासिल करते हैं तो लोग उससे बहुत जुड़ते हैं, अब ये भी एक बदलाव है कि मिताली राज जो महिला क्रिकेट में एक आइकन है उनके साथ भी लोग इतना जुड़ रहे हैं और इस बारे में लिख रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो T20 में मिताली के योगदान के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसी ही एक यूजर हैं रश्मि, जो लिखती हैं कि T20 में आपका करियर शानदार रहा, शुक्रिया हमें अच्छी यादें देने के लिए।
बिल्कुल, और एक और यूजर हैं अभिराम, वो लिखते हैं कि आपने हम में से कई लोगों को महिला क्रिकेट देखने और उसका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
तो दिव्या, आज 8 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को अटैक हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्विटर पर आज अपाचे टॉप ट्रेंड रहा है। अगर हमारे श्रोता इस हेलीकॉप्टर को देखना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आकर देख सकते हैं। अब बात उस एक ट्रेंड की जिसकी चर्चा सोमवार शाम से हो रही है। कुछ दिन पहले यूपी के मिर्जापुर के एक स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल ने बनाया था
और पवन जायसवाल से हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात भी की और उस बातचीत में उन्होंने बताया,
वीडियो जो है पूरा का पूरा, इसमें किसी तरह का काट छाट नहीं है, कोई क्रिएटेड नहीं है। और मैं जंगल प्रभावित क्षेत्र में गया था सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, अपने घर से करीब 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर गाँव में, वहाँ पे जाके वीडियो क्रिएट बना के आया हूँ और ये लोग क्रिएट का आरोप लगा रहे हैं हमारे। इस तरीके से जैसे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया समाज में, इन बुराइयों को हम लोग को उजागर करना ही पत्रकारिता होता है, लेकिन ये लोग पत्रकारिता पे आघात पहुंचा रहे हैं।
अब यूपी पुलिस ने पवन समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्रशासन का आरोप है कि पत्रकार पवन ने साजिश के तहत उत्तर प्रदेश शासन को बदनाम किया है।
ये थी बुशरा शेख और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टेनिस के कोर्ट पर, जहां पर अमेरिका में खेले जा रहे US ओपन में सोमवार देर रात स्पेन के राफेल नडाल ने 2014 के चैंपियन क्रोएशिया के मारिन चिलिक को हरा दिया। इस जीत के साथ ही वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहां उनका मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ग्समैन के साथ होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने चिलिक को 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। वह 2010, 2013 और 2017 में US ओपन जीत चुके हैं। नडाल 40वीं बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। US ओपन में उनका 9वां क्वार्टर फाइनल होगा। और शूटिंग की रेंज में भारत को ब्राजील में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक मिले। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने स्वर्ण अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में यशस्वी सिंह जायसवाल और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला और दीपक कुमार ने भारत को 4था स्वर्ण पदक दिलाया था। इससे पहले अंजुम मौदगिल और दिव्यांश सिंह पवार ने हंगरी के इस्तर और पीटर सिदी की जोड़ी को 16-10 से हराकर पदक जीता था। भारत इस वर्ल्ड कप में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा।
खेल की खबरें बता रही थी सूर्यांशी पांडे। और अभी अभी जानकारी आ रही है, ब्रितानी पार्लियामेंट अपने ग्रीष्म अवकाश के बाद आज दोबारा शुरू हुई है और ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, बताया जा रहा है उन्होंने अपनी संसद में अपनी मेजॉरिटी खो दी है। बाकी विश्व समाचार संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चक्रवाती तूफान डोरियन की वजह से बहामास में आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यूरोपीय संघ से अलग होने पर तीखे राजनीतिक विवाद के बीच ब्रिटिश संसद की आज बैठक आयोजित हुई। जर्मनी में एक दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक संगठन ने कहा है कि हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के बाद एक फूड फेस्टिवल में उसे अपने मेन्यू से बीफ हटाने को मजबूर होना पड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि वो अमरीका के साथ कभी भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। बीबीसी समाचार
सुना रहे थे संदीप राय। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया रेहान फजल ने और तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। रेडियो पर अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। अभी मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।